ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಯುನಾನ್ ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸುಕ್ರಾತ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ದಿನ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾ. ಸುನಾ ಥಾ ಯೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ವಿಚಾರಕ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಬಡಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಕ್ರಾತ್ ಸೇ ಮಿಲ್ನೆ ಆಯಾ. ಔರ್ ಸುಕ್ರಾತ್ ಸೇ ಕಹಾ, ಕ್ಯಾ ತುಮೇ ಪತಾ ಹೈ ತುಮಹಾರೇ ಏಕ ದೋಸ್ತ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ? ತೋ ಸುಕ್ರಾತ್ ಉಸ್ಸೇ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ಸೇ ಪಹಲೇ ಕಿ ತುಮ್ ಮುಝೇ ಅಪ್ನೇ ಏಕ ಉಸ್ ದೋಸ್ತ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬತಾಓ. ತುಮೇ ಏಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೇನಿ ಹೋಗಿ ಜಿಸೆ ಕಹಾ ಹೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ತೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಶ್ನ ಹೋಂಗೆ. ತೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಕೌನ್ ಸೇ? ತೋ ವೋ ಸುಕ್ರಾತ್ ಉಸ್ಸೇ ಕಹತಾ ಹೈ ಪಹಲಾ ತೋ ಯೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೈ, ಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಹೈ ಕಿ ತುಮ್ ಜೋ ಮುಝೇ ಅಪ್ನೇ ದೋಸ್ತ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ, ವೋ ಸತ್ಯ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ವೋ 100% ಟ್ರೂ ಹೈ, ಸಚ್ ಹೈ? ತೋ ವೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಹತಾ ಹೈ ನೈ, ಸಚ್ ತೋ ನೈ ಹೈ, ಮೈನೆ ದೂಸರೋ ಸೇ ಸುನಾ ಹೈ. ತೋ ಪಹಲಾ ಪ್ರಶ್ನ ಥಾ, ಪಹಲಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಥಾ ಕಿ ಜೋ ತುಮ್ ಮುಝೇ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ, ವೋ ಸತ್ಯ ಹೈ ಯಾ ನಹೀ ಹೈ? ತೋ ಕಹತಾ ಹೈ ವೋ ಮುಝೇ ಪತಾ ನಹೀ. ಫಿರ್ ಅಭಿ ಕಹತಾ ಹೈ ದೂಸರಾ ಫಿಲ್ಟರ್, ದೂಸರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ದೂಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಜೋ ತುಮ್ ಮುಝೇ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ, ವೋ ಅಚ್ಛಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಯಾ ಬುರಿ ಬಾತ್ ಹೈ? ತೋ ವೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಹತಾ ಹೈ ಅಚ್ಛಿ ಬಾತ್ ತೋ ನಹೀ ಹೈ. ತೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಚಲೋ ಯೇ ಭಿ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಪಹಲಾ ತೋ ತುಮೇ ಯಹೀ ಪತಾ ನಹೀ ವೋ ಸಚ್ ಹೈ ಯಾ ಝೂಠ ಹೈ, ದೂಸರಿ ಜೋ ಬಾತ್ ತುಮ್ ಮುಝೇ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ ಅಪ್ನೆ ಮಿತ್ರ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ, ಮೇರೇ ಮಿತ್ರ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ, ವೋ ಸಚ್ ಹೈ ಯಾ ಝೂಠ ಹೈ, ವೋ ಅಚ್ಛಿ ಹೈ ಯಾ ಬುರಿ ಹೈ? ತುಮ್ ಕಹತೇ ವೋ ಬುರಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ತೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಫಿರ್ ಭಿ ಚಲೋ ತೀಸರಾ ಪ್ರಶ್ನ, ಜೋ ಬಾತ್ ತುಮ್ ಮುಝೇ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ ಮೇರೇ ಮಿತ್ರ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ, ಕ್ಯಾ ಉಸ್ಸೇ ಮುಝೇ ಕೋಯಿ ಫಾಯ್ದಾ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ? ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಹತಾ ಹೈ ಮುಝೇ ನಹೀ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಫಾಯ್ದಾ ಹೋಗಾ. ತೋ ಸುಕ್ರಾತ್ ಉಸ್ಸೇ ಕಹತಾ ಹೈ ತುಮ್ ಮುಝೇ ಐಸಿ ಬಾತ್ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ ಮೇರೇ ಮಿತ್ರ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ, ಪಹಲೇ ತೋ ಯೇ ಪತಾ ನಹೀ ವೋ ಝೂಠ ಹೈ, ವೋ ಸತ್ಯ ಹೈ ಯಾ ಝೂಠ ಹೈ, ಕಿಸೀ ಔರ್ ಸೇ ತುಮ್ನೆ ಸುನಿ ಹೈ? ಔರ್ ದೂಸರಿ ವೋ ಬಾತ್ ಬತಾನಾ ಚಾಹತೇ ಹೋ ಜೋ ಬುರಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಔರ್ ತೀಸರಿ ಐಸಿ ಬಾತ್ ಬತಾನಾ ಚಾಹತೇ ಹೋ ಜಿಸ್ಸೇ ಮೇರಾ ಕೋಯಿ ಫಾಯ್ದಾ ನಹೀ ಹೈ. ತೋ ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ರಹನೆ ದೋ, ತುಮ್ ಮುಝೇ ಬತಾಓ ಹೀ ಮತ್. ಅಗರ್ ಐಸಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಜೋ ಯೇ ತೀನೋ ಹೀ ಟೆಸ್ಟ್, ತೀನೋ ಹೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ನಹೀ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ತೋ ತುಮ್ ಮುಝೇ ವೋ ಬಾತ್ ಬತಾಓ ಹೀ ಮತ್. ಇಸೇ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ವಿದೇಶ್ ಮೇ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಜ್ ಕಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಾಣಿ ಮೇ ಬಾಬಾ ನೇ ಐಸಿ ಹೀ ಏಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬತಾಯಿ ಹೈ, ಕೌನ್ ಸಿ ಹೀ? कौन सी है वो? क्या कौन सी वो तीन, कौन सी वो तीन टेस्ट है? हर कर्म करने से पहले और हर संकल्प करने से पहले क्या चेकिंग करो और बाद में फिर प्रैक्टिकल, कौन सी चेकिंग करो? बाबा ने कहा है कोई भी संकल्प करने से पहले और कोई भी कर्म करने से पहले ये चेक करो, बाद में करना. कौन सी? अभी भी नहीं? कौन सी ट्रिपल टेस्ट? स सबसे पहला तो प्यारे ते प्यारी वस्तु कौन सी है संसार की? एक बाप। दूसरा, बढ़िया से बढ़िया चीज कौन सी है संसार की? और तीसरा, इससे भी श्रेष्ठ। प्यारा, बढ़िया, श्रेष्ठ, लविंग, ब्यूटीफुल, एलिवेटेड। कोई भी संकल्प करने से पहले और कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचो, मन कहाँ जाता है? जहां मन जा रहा है, क्या उससे भी प्यारे से प्यारी वस्तु, क्या बाप से भी प्यारे से प्यारी वो वस्तु है? बाप अति प्यारा है। मुरली में महावाक्य है, बाप कैसा है? अति प्यारा है। क्या उससे भी प्यारे से प्यारी कोई वस्तु है संसार में? वो वस्तु, चाहे संसार की वस्तु या व्यक्ति या कोई संबंध, परंतु बाप का जो संबंध है, क्या उससे भी प्यारे से प्यारा कोई संबंध है? क्या बाप जैसी चीज इस संसार में है? कितनी सूक्ष्म चेकिंग है ये। मन का स्वभाव है भागना, मन का स्वभाव है दौड़ना। चेक करो, चेंज करो, उसी घड़ी चेक करो। मुरली में और एक शब्द है, क्या? उसी घड़ी चेक करो कि मन कहाँ जा रहा है। मन को समझाओ, मन से बात करो, मन से रूरियान करो। हे मन, क्या चाहिए तुझे? किस ओर दौड़ रहा है? कहाँ जा रहा है? बढ़िया से बढ़िया वस्तु एक बाप ही है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु, चीज, व्यक्ति एक ही है। तो क्या करना है फिर? एक मास का समय है, आज की तारीख क्या है? 18 दिसंबर, 18 जनवरी तक एक मास। इस मुरली का ये सबसे पहला होमवर्क क्या करना है? चेकिंग, मन की चेकिंग, और बार बार चेकिंग। पहले तो देखना है वो जाता कहाँ है, उसकी गति किस ओर है, उसको किस में रस है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं संसार को छोड़ दिया, मर्जी वा जन्म है, जीवंत मृत्यु है, लिविंग डेथ, परंतु मन अब भी दौड़ रहा है, अब भी भाग रहा है, अब भी रस है उसे। मन के किसी कोने में छिपा हुआ यह रस, व्यक्ति में, संबंध में, देह में, संसार की वस्तुओं में, संसार के साधनों में, वैभव में, पुराने संस्कारों में। तो क्या करना है? ट्रिपल टेस्ट लगानी है, इसकी कसौटी पर उतारना है हर व्यक्ति को और हर वस्तु को और हर साधन को और हर संस्कार को और हर संकल्प को और हर कर्म को, हर और बोल को और हर वृत्ति को, हर दृष्टि को। एक दूसरा महत्वपूर्ण होमवर्क बाबा ने इस मुरली में दिया है, जो बाबा सेवा केंद्रों के लिए कह रहे हैं। सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली बनाओ, वृत्ति से वायुमंडल, आत्माएं कमजोर है, रूहानी आकर्षण हो आत्माओं को। यहां आते ही ऐसा अनुभव हो जैसे रूहानी मंदिर में, किसी मंदिर में जा रहे हैं, खिच खिच कर आत्माएं आ जाए। उसके लिए बाबा ने चार बातें बताई है। कौन सी चार बातें? क्या करो सेवा केंद्र पर? क्या करो? चार बातें करो। एक तो योग भट्टी, जिसको बाबा ने कहा याद का प्रोग्राम। दूसरा स्नेह मिलन। तीसरा ज्ञान के रूहरियान। और चौथा धारणा युक्त क्लास। ये बातें बाबा ने सेवा केंद्रों के लिए कही है और वहां के वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए कही है। परंतु हम सोच रहे थे ये बातें चार जो है ये अपने मन में करनी है, अपने लिए, अपने साथ। सबसे पहला योग का प्रोग्राम अर्थात याद की भट्टी अर्थात योग भट्टी, स्वयं ही स्वयं की योग भट्टी का प्रोग्राम बनाना है। उस रूप से बने या न बने, परंतु स्वयं क्या करना है, स्वयं की योग भट्टी का प्रोग्राम एक मास का, आज से एक। दूसरा स्नेह मिलन। वहां बाबा कह रहे हैं बाहर की आत्माओं के लिए, यहां स्नेह मिलन अपने ही मन में मनाना है। जिन जिन आत्माओं के प्रति मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या या असम्मान का भाव है, उन आत्माओं के लिए अपने मन में, अपने मन के तीर्थ में, अपने मन के सेवा केंद्र में क्या करना है, स्नेह मिलन मनाना है उन आत्माओं से। कुछ को माफ कर दो और कुछ से माफी मांग लो, कुछ को धन्यवाद दे दो, परंतु यह स्नेह मिलन मन में मनाना है। जब तक मन पकड़े हुए है किसी के अवगुण को, चित्त पर धारण किए हुए है, गांठ है मन में कोई, जहां गांठ होती है गन्ने में वहां रस नहीं होता। संबंध में कड़वाहट है, मनोमालिन्य है, मनमुटाव है, घृणा का सूक्ष्म भाव छिपा है, पकड़े हुए है, क्षमा नहीं किया है, अब भी मन में नफरत है, अब भी सूक्ष्म बदला भरा हुआ है, किसी ने बहुत दुख दिया, ग्लानी की, अपमान किया, निंदा की, माफ नहीं किया है, स्नेह मिलन मनाना है। तीसरा रूहरियान, ग्रुप डिस्कशन, अपने ही मन से रूहरियान करना है, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो, किस लिए आए थे, किस लिए ब्राह्मण बने थे, किस लिए बाबा के पास आए थे, कौन सी वो मंगे थी जब आए थे, कौन से वो संकल्प थे, क्या वो लक्ष्य था और कहां खो गया। डिस्कशन, स्वयं से बात। चौथा धारणा युक्त क्लासेस। किसकी करानी है किसकी कराएंगे क्लासेस? ब्राह्मण होशियार है क्लासेस कराने में। बाबा कहते हैं मेरे से भी अच्छी भाषण करते हैं बच्चे, और धारणा वाली क्लास तो और ही जोर से कराते हैं। परंतु क्लास अब किसकी करानी है? खुद की क्लास करानी है। किसका क्लास लेना है? अपना। किसको आग दिखानी है? अपने को। धारणा युक्त क्लासेस स्वयं स्वयं के मन की करानी है। तो ये मुरली से है दूसरा होमवर्क। तीसरा, हर कर्म करते हुए एक समान लेने को बाबा ने कहा है तब सफलता होगी। कौन सा समान है वो? हर कर्म करते हुए समान लेना है। कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। फ्रांस, ब्राजील और अन्य ग्रुप से मुलाकात, यह सम्मान लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जैसी वृत्ति होगी वैसा वातावरण होगा, जैसी वृत्ति होगी उससे वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल अगर शक्तिशाली है तो आत्माएं खिंच कर आएंगी, क्योंकि आत्माओं में इतना बल नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। तो हमारे मन में जो संकल्प होंगे वो वायुमंडल में तरंगित होंगे, हमारे संकल्प संकल्प तक पहुंचेंगे, संकल्प संकल्प को परिवर्तन करेंगे, वृत्ति वृत्ति को बदलेगी। इतने श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में हो, समान के संकल्प, तब सेवाओं में सफलता होगी। एक रस एक मत जब होगा तब सेवाओं में सफलता होगी। तो हर कर्म करते हुए बीच बीच में क्या करना है? समान का अभ्यास। चौथा होमवर्क, माया जीत। क्या बनना है? माया जीत। इस माया को जीतना है। लड़ाई है, पढ़ाई है और चढ़ाई है इस जीवन में। यू आर एट वॉर विथ माया। हमारी लड़ाई माया से है। तो माया से जीतने के लिए बाबा ने कुछ बातें बताई है। कौन कौन सी? क्या करो माया जीत बनने के लिए? राजीव भाई, क्या करना है माया जीत बनने के लिए? माया जीत बनने के लिए सबसे पहले स्वयं को क्या करना है? बिजी रखना है। क्या करना है? बिजी रखना है। किस में बिजी रखना है? स्वयं को कमाई करने में बिजी रखना है। कौन सी कमाई करनी है? तुम कौन हो जो कौन सी कमाई कर रहे हो? कौन हो तुम जो कमाई कर रहे हो, और कौन सी कमाई कर रहे हो, और कैसी ये कमाई है? कौन सी अदृश्य कमाई हो? कहेगी मस्तक पर बाप दादा चमकता हुआ सितारा देख रहे, बाबा पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे, एक एक आत्माओं को देख रहे जो पद्मों की कमाई कर रहे। ऐसी पद्मों की कमाई करने वाले तुम बिजनेसमैन हो, ऐसे उद्योगपति हर कदम हर पल हर समय कमाई कर रहे हो, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ हो। तो इसी में बिजी रहना है। अगर इसमें बिजी रहा तो रहेंगे तो क्या होगा? माया आएगी, परंतु देखेगी क्या बिजी है तो दरवाजे से ही लौट जाएगी। एक तो माया लौट जाएगी, और क्या होगा बिजी रहने से? टाइम वेस्ट नहीं होगा, और क्या होगा बिजी रहने से? बिजी रहने से क्या होगा निखिलेश भाई? हर कार्य इजी हो जाएगा, और बिजी रहने से क्या होगा? व्यर्थ में नहीं जाएगी आत्मा, और बिजी रहने से क्या होगा? स्थूल कार्यों में भी अगर कोई बिजी रहता है तो क्या होता है? माइंड एक्टिव रहता है, माइंड प्रोडक्टिव रहता है, माइंड रचनात्मक रहता है, थकता नहीं है, व्यर्थ की बातों में नहीं जाता है, निगेटिव में नहीं जाता है, पर चिंतन पर दर्शन में नहीं जाता है, और अपने कार्य में उन्नति करता है, संतुष्टता का भाव जागता है। अगर कोई बिजी रहे तो स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने कभी पूछा था कि आप तो ब्रह्मचारी हो, तेजस्वी हो, क्या काम विकार आपको नहीं सताता? उन्होंने उत्तर दिया था, मैं अपने कार्य में निरंतर इतना व्यस्त रहता हूं, इतना बिजी रहता हूं, तो ये जो काम विकार ये आता तो है, रोज आता है, परंतु जब देखता है कि मैं बहुत बिजी हूं और बहुत व्यस्त हूं तो क्या करता है? लौटकर चला जाता है। मैं अपने आप को कभी खाली नहीं छोड़ता, निरंतर प्लानिंग, निरंतर कार्य की चिंता, निरंतर जगत के कल्याण की चिंता में रहता हूं। बाबा कहता है तुम्हें भी चिंता होनी चाहिए सत्व प्रधान बनने की, तुम्हें भी ओना होना चाहिए, तुम्हें भी पूर्ण होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए मैं सत्व प्रधान कैसे बनूं। शुभ कार्य है ये, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, निरंतर इसी में बिजी रहना। तो निरंतर याद में, कमाई में, सेवा में जो बिजी रहते हैं उनके पास माया नहीं आती है। तो मायाजित बनने का पहला साधन कौन सा है? स्वयं को बिजी कर देना। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा जर्मनी से मुलाकात, क्या करेंगे? दूसरा बाप के साथ रहना, कंबाइंड रहना। माया की स्ट्रेटेजी क्या है? माया किस तरह आक्रमण करती है? सबसे पहले बाप से अलग कर देती है और फिर आक्रमण करती है। इसके लिए निरंतर उसके साथ रहना, उसके साथ चलना, उसके साथ उठना, सारे कार्य उसके साथ करना, कंपनी और कंपेनियन। वरदानी आत्माओं के साथ कौन रहे? वरदाता। सिंगल नहीं होना है, क्या रहना है? युगल मूर्त। तो दूसरा है साथ, तीसरा है मायाजीत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आज की मुरली से? माया के नॉलेजफुल बनना होगा। क्या बनना होगा? माया के नॉलेजफुल। जगदीश भाई ने कभी अपने किताब में लिखा हुआ है कि भगवान को जानना बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है। कोटों में कोई और कोई में कोई ही जान सकता है भगवान को, भगवान को पहचान लेना। परंतु उससे भी बड़ा एक कार्य है, वो कौन सा? माया को पहचान लेना, माया के कालनेमी रूप को पहचान लेना। कालनेमी पता है ना? कालनेमी, हाँ। हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने जाते रहता है तो नीचे देखता है एक महात्यागी और महातपस्वी, एक योगी बैठा है एक पर्वत पर और शिव का गुणगान कर रहा है। देखकर ऐसे लगता था ये जैसे बहुत बड़ा शिव भक्त है, कोई शिव की भक्ति कर रहा है। हनुमान को प्यास भी लगती है और भूख भी, इसके लिए नीचे उतरता है उस पर्वत पर, उसकी वंदना करता है, सोचता है बहुत बड़ा भक्त है। वो भक्त कौन होता है? वास्तव में कालनेमी, जो कि रावण का अंकल होता है। रावण ने भेजा होता है कि हनुमान को मार दो तो आधा राज्य, आधी लंका तुम्हारी। भेज बदल कर आता है। कौन सा भेज धारण करके आता है? शिव भक्त का, साधु का भेज धारण करके आता है। हनुमान कहता है मैं तुम्हारे पास जो फल है वो स्वीकार तो करूंगा, परंतु पहले नहा के आता हूं। और दिखाया है कहानी में, नहाने जाता है, एक मगरमच्छ पकड़ता है, मगरमच्छ का उद्धार करता है, अप्सरा प्रकट होती है। अप्सरा कहती है इससे बच के रहना, ये कोई साधु वाधु नहीं है, कौन है? राक्षस है। तो माया कौन सा रूप धारण करती है? कालनेमी रूप, साधु का रूप। श्वेत वस्त्र धारण करके घूम रही है इधर, बैच लगाते हुए। उसे पहचानना होगा, बाप को तो पहचान लिया, अब माया के नॉलेजफुल किस रूप से माया आ रही है ये जान लेना कि ये माया है। ये अलग कर देना, ये मनमत, ये श्रीमत और ये परमत, बस यही पुरुषार्थ है। छांट लेना, मनमत क्या, परमत क्या और श्रीमत क्या। माया किसी भी रूप से आ सकती है। अभी अभी था ना रुस्तम, जैसे बनते जाओगे तो माया भी रुस्तम बनेगी। माया को परखना, माया को जानना, इसके लिए बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही सूक्ष्म चाहिए, तो ही पहचान सकेंगे। हनुमान के जीवन में और दिखाया, समुद्र यात्रा जब करता है अंगूठी पहुंचाने, तो कितने अलग अलग रूप से आती है माया वहां पर भी। मैनाक पर्वत आता है, एक सोने का पर्वत, वो उसमें उतरता तो है परंतु ठहरता नहीं है, फंसता नहीं है वहां पर। सुरसा, लंकिनी, अलग 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 रूप से माया आती है, परंतु उसे तो पहुंचना है, उसे तो अपने लक्ष्य का, अपने गंतव्य की चिंता है। तो माया को पहचानना। और चौथा रूप, चौथी विधि माया को जीतने की, जापान से मुलाकात में, एक रस और एक मत। संगठन में सभी एक मत हो और एक रस हो तो माया आ नहीं सकेगी और वायुमंडल शक्तिशाली होगा। तो ये चार विधि बताई है बाबा ने, किस लिए? माया जीत बनने के लिए। सबसे पहला, स्वयं को बिजी कर देना। जो लोग बिजी नहीं रहते उनको किसी ना किसी रूप से माया आती रहती है। जिनके मन में प्लान है, क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ की चिंता है, एक एक पल का प्लानिंग है, तो सबसे पहले बिजी, दूसरा बाप के साथ, तीसरा माया को पहचान लेना, मेरे जीवन में माया किस किस रूप से आज के दिन में विद्यमान है। हो सकता है जिसे हमने बहुत ही प्यार से अपने साथ रखा है, अपना साथी बनाकर, और जिसे हमने माना है ये सामान्य है, ये होना ही चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, हो सकता है वही व्यक्ति माया है जीवन में। जिसे गहनों की तरह सजाए रखा है शायद वही बंधन है। जिसकी दिन रात चिंता में है शायद वही सबसे बड़ी माया है। जिसे सबसे बड़ा मित्र समझ रखा है वही सबसे बड़ा शत्रु है। जिस आसक्ति को पुरुषार्थ में सहयोगी समझ रखा है, जिस व्यक्ति को सेवा में साथी समझ रखा है, शायद, संभवतः, परहैप्स, वही बाधा है। यह जान लेना। ही तीव्र पुरुषार्थ है। और चौथा, एक रस, एक मत। आज की मुरली में बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, और इस यज्ञ का, इस यज्ञ के अंतरिक्ष में सूर्य की भांति चमकने वाला जो विषय है वो कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता, कंप्लीट प्यूरिटी। जगदीश भाई जी ने किताब लिखी थी, शायद अब वो लिटरेचर डिपार्टमेंट में नहीं है, स्पॉटलाइट अंग्रेजी में किताब थी, छोटी सी, स्पॉटलाइट ऑन नॉलेज, प्यूरिटी एंड राजयोग। उसमें प्यूरिटी शब्द के कुछ अर्थ बताए थे। अंग्रेजी शब्द है PURITY, उसी अर्थों में उसके अर्थ बताए थे। हाउ टू अचीव प्यूरिटी, उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें बताया है प्यूरिटी का क्या अर्थ है। पी सबसे पहले है, पी मीन्स पावर टू कंट्रोल द माइंड, वह शक्ति जिससे मन वश में आ जाए। पी, यू अर्जेंसी, यू मतलब अर्जेंसी। कौन सी अर्जेंसी है प्यूरिटी के विषय में? आपातकालीन सिचुएशन है, तुरंत संसार में आग लगी है विकारों की। कल की मुरली, साकार मुरली में पवित्र बनना और बनाना यही शुभ कार्य है, धारणा में कहा, इसमें देरी नहीं करनी है। ये कार्य अर्जेंट वर्क है, पवित्र बनना बहुत समय लगा दिया है। ज्ञान तो कब से मिल गया परंतु फिर भी पवित्रता का बार बार खंडन हो रहा है। अब समय है, अब ये आपातकालीन परिस्थिति आई है, अर्जेंसी। पवित्र कब बनना है? कहते तो है सब बनना है, बनाना है, परंतु बाद में बनेंगे, टाइम है अभी बहुत अर्जेंट। आर, पी यू आर, आर राइट कॉन्शियसनेस, राइट कंपनी, राइट फूड, रीडिंग गॉडली वर्शंस, पढ़ना और चिंतन करना, रीडिंग गॉडली वर्शंस, परमात्मा महावाक्य, राइट कॉन्शियसनेस, राइट वह सम्यक चेतना का भाव, वह सम्यक चेतना का बोध, वह सम्यक संग। आज कहा ना, कुसंग क्या है? पराई चीज है, हमारे संस्कार नहीं है। पवित्रता हमारे संस्कार है, आदि अनादि संस्कार। राइट फूड, ब्राह्मणों के बुद्धि का भोजन क्या है? पवित्र संकल्प। आय, उसके बाद है आय, आय अर्थात इंट्रोवर्शन, अंतर्मुखता, और वाय, वाय अर्थात योग, योगा। तो ये छह बातें बताई है, प्यूरिटी की परिभाषा कहो या वेज टू अचीव प्यूरिटी, ये सभी अपने जीवन में लानी है। और आज की मुरली में बाबा क्या देख रहे हैं? प्यूरिटी की रेखा, हमेशा क्या देखते हैं? भाग्य की रेखा है। आज बाबा क्या देख रहे हैं? प्यूरिटी की रेखा है। तो इस मुरली से, इस मुरली में हमने 21 बातें ऐसी निकाली है, टोटल 21 पॉइंट्स ऑफ प्यूरिटी। अगर ये बातें बाबा ने कहा स्मृति में है तो पवित्रता सहज है, वरना पवित्रता में हट और पवित्रता में मेहनत, या पवित्रता में प्रश्न। तो हट ना रहे, मेहनत ना रहे और प्रश्न ना रहे, पवित्र बनूं, पवित्र हूं, ये सब ना हो। तो ऐसी बाबा ने आज की मुरली में पवित्रता की 21 पॉइंट से, उससे पहले बाबा ने एक वरदान दिया है आते ही, कौन सा? एक नहीं, दो, सहज योगी बनो और पवित्र भव। सहज योगी भव और पवित्र भव, ये जो पवित्रता की पॉइंट्स है 21, चाहे इनको पवित्रता का महत्व कहो, चाहे पवित्रता को लाने की विधि कहो, या पवित्रता के विषय में कही हुई सर्वश्रेष्ठ पॉइंट्स कहो। वैसे तो पवित्रता बहुत ऊंचा सब्जेक्ट है, जो ब्रह्मचर्य से शुरुआत होती है, जिसकी काम को जीतना, सारे विकारों को जीतना और ब्रह्मचर्य, पवित्रता, निर्विकारिता, पावनता। देवताओं के लिए कहा जाता है पावन, वो अंतिम लक्ष्य है। ब्रह्मचर्य पर बहुत बार चर्चा की है, आज पवित्रता पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट जो बाबा ने आज की मुरली में कही, इस महान जीवन की क्या है पवित्रता? महानता। इन पॉइंट्स को सभी याद कर लेंगे, अपनी बुद्धि पर छाप लेंगे, ताकि कभी भूल लेना। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप हो तो समर्थी स्वरूप हो जाएंगे, निरंतर बुद्धि में एक भी पॉइंट ना भूले। और अगला एक मास हमारे पास है पुरुषार्थ का, तो अपनी प्यूरिटी की जो स्टेज है, प्यूरिटी का जो ग्राफ है, प्यूरिटी का जो पुरुषार्थ है और प्यूरिटी की जो अवस्था है, वो इतनी आगे बढ़ानी है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखते हुए, सबसे पहली पॉइंट पवित्रता इस महान जीवन की क्या है? महानता है। संसार में इतने व्यक्ति है वो केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और इतनी अद्भुत शक्ति उनमें आ जाती है, केवल ब्रह्मचर्य के बल से, केवल ब्रह्मचर्य के बल से वह तेज और वह ओज और वह पावर उनमें प्रकट हो जाती है। यहां तो पवित्रता की बातें चल रही है। तो पहला पॉइंट महान जीवन की महानता, दूसरा पॉइंट पवित्रता ही इस जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। हमारा श्रृंगार संसार के श्रृंगार की तरह नहीं है, ना ही संसार का जो श्रृंगार है उससे जो आत्माएं श्रृंगारित है वो किसी भी अर्थों में सुंदर है, क्योंकि वहां सत्य नहीं है, और जहां सत्य नहीं वहां शिव नहीं, और वहां सुंदर भी नहीं। पवित्रता ही हमारा क्या है? गहना है, श्रृंगार है, डेकोरेशन है, ऑर्नामेंट है। तो दूसरी पॉइंट है, पवित्रता से स्वयं को श्रृंगारना है। जितना श्रृंगार अब है उससे संतुष्ट नहीं होना है। जितनी पवित्रता की स्थिति, पवित्रता की लेवल और पवित्रता है उसे 10 गुना बढ़ाना है। कितना? 10 टाइम्स। तीसरा पॉइंट, पवित्रता ही श्वास है इस जीवन का। क्या है? श्वास। यदि श्वास ही ना हो तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति मर जाएगा। तो जो ब्राह्मण जिनके नासपुटों में यह श्वास आ नहीं रहा है और जा नहीं रहा है, क्या उसे जिंदा कहेंगे? वो ब्राह्मण ही नहीं है। शायद ब्राह्मण जीवन से ही मृत्यु हो गई है। तो इस जीवन का श्वास क्या है? पवित्रता। चौथा पॉइंट, 21 जन्म के प्रारब्ध का आधार। भविष्य जो पद मिलने वाला है, भविष्य जो राजाई है, उसका आधार अब है। जैसा हम अब होंगे उसी अनुसार हमें पद मिलेगा। तो भविष्य का भी आधार वर्तमान है, भविष्य का भी आधार वर्तमान की प्यूरिटी की स्टेज है। चौथा। पांचवा, मिलन का आधार क्या है? बाप और बच्चे के मिलन का आधार, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार है पवित्र बुद्धि। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर कहता है मेरा मन ऐसा निर्मल हो गया है जैसे गंगा नीर। अब तक तो मैं उसके पीछे था, अब पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर, वो हमारे पीछे है। वाह मेरे बच्चे, आज कहा ना, वो कहते हैं वाह मेरे बच्चे और वो कहते हैं वाह मेरे बच्चे। सारे कल्प में ना तो ऐसा बाप कहीं होगा और ना ऐसे बच्चे कहीं रह सकते हैं। और उसकी श्रीमत पर यदि चले तो फूलों की वर्षा होगी ऊपर से, अभी अभी किसी वक्त प्रकट हो जाएंगे सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, फरिश्ते, एंजल्स, सारे के सारे। तो पांचवी पॉइंट है, आत्मा और परमात्मा का मिलन अव्यक्त मिलन है। इसका आधार है पवित्र बुद्धि। ये कोई व्यक्ति से मिलन नहीं है, अव्यक्ति से मिलन है। किससे मिलन है? अव्यक्ति से। किसी व्यक्ति से नहीं, किसी सांसारिक देहधारी से नहीं, किसी पार्थिव जीवधारी से नहीं, अव्यक्ति मिलन, अव्यक्त मिलन। छठवा, जो बातें जैसी जैसी बता रहे हैं बुद्धि में एक एक पॉइंट छाप छप जाए, कभी ना भूले। 21 पॉइंट है टोटल। छठवा, सर्व प्राप्तियों का आधार। अगर पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। सुख और शांति तो वो बच्चे हैं जो पवित्रता की गोद में खेलते हैं। सर्व प्राप्तिया का आधार है संपूर्ण पवित्रता। अगर जीवन में प्राप्ति का अनुभव नहीं, यदि जीवन में असंतुष्टता है, दुख है, दर्द है, गम है, पीड़ा है, शायद संभवतः परहैप्स कहीं ना कहीं पवित्रता में कमी है। सातवां, पूज्य पद का आधार। परम पूज्य पद का आधार भी क्या है? पवित्रता। परम पूज्य पद हम लेंगे द्वापर का, उसका भी आधार क्या है? अब की पवित्रता। यहां जितनी हमारी पवित्रता श्रेष्ठ उतनी हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा भी उसी अनुसार होगी। पूज्य जो हम बनेंगे उसी आधार से। आठवा, लाइफ, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने। ब्राह्मणों की क्या है पवित्रता? लाइफ है, जीवन है। पवित्रता है तो जीवन, पवित्रता नहीं तो मृत्यु। इस जीवन से ही मृत्यु। यदि अब भी चित्त में, मन में, भाव में, भावनाओं में, कल्पनाओं में, फैंटेसी में, इमेजिनेशन में, फैंसी में, शब्द में, वृत्ति में, कर्म में, कर्म तो बहुत दूर की बात है, में भी यदि अपवित्रता आ रही है तो इसे मृत्यु ही कहा जाएगा। वो आया है और हम मरे पड़े हैं। नौवा, पवित्रता ही जीवदान है, जीवदान है। पवित्रता ही क्या है? डोनेशन ऑफ लाइफ, जीवदान है इस जीवन का। दसवा, दसवा, अनादि अदा, अनादि आदि स्वरूप है। पवित्रता ही क्या है? हमारा अनादि और आदि स्वरूप है। यही अनादि रूप है अपना। अभी अभी गीत सुना, कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला। तो हमारा अनादि स्वरूप, हमारा आदि स्वरूप, जब हम देव थे तब भी हम संपूर्ण पवित्र थे, जब हम परम धाम में थे वो हमारा परम पवित्र स्वरूप था। इनको याद करना, इनको स्मृति में लाना, इस समर्थि में रहना, इस स्मृति में रहना तो समर्थ होंगे। ग्यारहवा, विशेष जन्म की विशेषता। ग्यारहवा विशेषता है ये। इस जीवन की विशेषता ही पवित्रता है। अगर ये नहीं तो हम ब्राह्मण ही नहीं, विशेष ही नहीं जीवन। बाबा ने कहा है, नवीनता है पवित्रता, इस जीवन की विशेषता। बारहवा, बुद्धि का भोजन है पवित्र संकल्प। तेरहवा, रोशनी है आंखों की रोशनी, पवित्र दृष्टि। हमारी जो दृष्टि है यदि उसमें अपवित्रता है, इसका मतलब हम अंधे हैं। आंखों की बिनाई, आंखों की रोशनी, द लाइट ऑफ द आईज, प्यूरिटी है। चौदहवा, पवित्र कर्म हमारा विशेष धंधा है। हमारे सभी कर्म कैसे हो? पवित्र हो। पंद्रहवा, पवित्र संबंध संपर्क हमारा क्या है? मर्यादा है। सबसे पावरफुल पॉइंट है ये। हमारे जो संबंध संपर्क है आत्माओं के साथ, यदि उसमें विकार की भावना है, यदि उसमें अपवित्र भाव है, भावना है, फीलिंग है, इमोशंस है, कल्पना है, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, देह का आकर्षण है, दैहिक भोग की कामना है, इच्छाएं हैं, प्राप्ति की कामना है, डिटैचमेंट नहीं है, मोह है, आसक्ति है, लगाव है, झुकाव है, अनुरक्ति है, तो इसे पवित्र संबंध संपर्क नहीं कहा जाएगा। हमारी कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी मर्यादा क्या है? पवित्र संबंध। सोलहवा, पवित्रता ही जीवन का वरदान है। क्या है? इस जीवन का वरदान है। तो हट और मेहनत क्यों? हट तो सन्यासियों ने भी की, परंतु कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। मेहनत तो योगियों ने भी की, ऋषियों ने भी की, परंतु मेहनत, एफर्ट कभी सफल नहीं हुए। सत्रहवीं, निजी वस्तु है, पवित्रता क्या है? तुम्हारी निजी वस्तु है। बाप अपना, रावण पराया। अपने जो अपना है उसको अपनाने में मेहनत, तो निजी वस्तु है। क्या हमने इसे निजी वस्तु माना है? बाबा ने कहा है पवित्रता की जायदाद बाप देने आए हैं। निजी वस्तु, अपनी वस्तु। 17वीं पॉइंट, 16 हो गया? नहीं, ये 16 थी, अभी 17, 18, चलो 18 ले लो। बाप का वरदान है। पहला था जीवन का वरदान, 16वीं थी जीवन का वरदान, 18वीं है ये बाप का वरदान है, और इसका तुम्हें नशा रहना चाहिए। इस वरदान का नशा रहना चाहिए। ये वरदान अपना वरदान है, इसका तुम्हें नशा रहना चाहिए। 19वीं पॉइंट, 19वीं में 6 बातें हैं। स्वस्वरूप पवित्र, स्वदेश पवित्र, स्वधर्म पवित्र, स्वराज्य पवित्र, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य, और सुकर्म सुकर्म का स्वभाव क्या है? कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव क्या है? सुकर्म। कितनी अच्छा ये वाक्य है, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। जो अगर विकर्म हो रहे हैं वो उसका अनादि स्वभाव नहीं है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव क्या है? सुकर्म। 20वीं पॉइंट, समान। कौन सा समान? मैं परम पवित्र आत्मा हूं, यह है समान। इस समान में हर कर्म करो। समान जहां है वहां पर देहभान, देहाभिमान, देह अहंकार नहीं। 21वीं पॉइंट और अंतिम पॉइंट कौन सी, कौन बताएगा? उसके बाद में एक छोटा सा योग का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी वो 21वीं पॉइंट है? वो है बीच में, परंतु लास्ट पॉइंट है नेचुरल पवित्रता का आधार क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, लवलीन रहना एक बाप में, एक बाप दूसरा न कोई, यह नेचुरल पवित्रता है। तो पवित्रता की यह 21 बातें हैं। मुरली फिर से पढ़ना, फिर से निकालना, फिर से ढूंढना। बीच की कुछ कुछ बातें हमने छोड़ी है, तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे। एक योग का छोटा सा प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो दो चार छोटी सी छोटी मोटी जो बातें छूटी है उस पर फिर चर्चा करेंगे। इस योग के प्रयोग में हमें इस ब्राह्मण परिवार को ही पवित्रता की सकाश देनी है। अगर ये ब्राह्मण परिवार पवित्रता में एक एक आत्मा पवित्र हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तो सारी संसार की जो बची कुची आत्माएं हैं उनको पवित्रता की प्रेरणा, पवित्रता की सकाश, पवित्रता के वाइब्रेशंस, पवित्रता के प्रकंपन स्वतः ही प्राप्त होंगे। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं। संपूर्ण पवित्र पवित्रता ही मेरा श्रृंगार है, पवित्रता ही मेरा जीवन है। पवित्रता ही इस जीवन का श्वास है। मैं इस संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा हूं। मस्तक पर चमकती मणि हूं। अपने आप को देख रहा हूं, कैसा दिव्य प्रकाश है मेरा। चारों यह पवित्र कंपन, यह पवित्रता की रश्मियां यह पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मेरा यह स्थूल देह अदृश्य हुआ और मैं पा रहा हूं स्वयं को सूक्ष्म वतन में, अति पवित्र सूक्ष्म देह धारण कर। पवित्रता के सूर्य बाप दादा मेरे सम्मुख है। भगवान का वरदानी हस्त सिर पर, बच्चे सहज योगी भव, बच्चे पवित्र भव, मस्तक पर बाबा तिलक दे रहे, बच्चे विजयी रत्न भाव, देखते ही देखते समग्र ब्राह्मण परिवार यहां पर इमर्ज हुआ है। बाबा के नैनों से अतीव पवित्रता की किरणें निकल समूचे ब्राह्मण परिवार पर पड़ रही है। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ हूं और मुझसे भी इस संपूर्ण परिवार को पवित्रता की किरणें जा रही है। यह किरणें एक छत्र छाया बन गई है, एक एक वरदानी आत्मा स्वयं को वरदाता के साथ अनुभव कर रही है। हर आत्मा का एक एक संकल्प पवित्र बन चुका है, एक एक स्वप्न पवित्र हो गया है। स्वयं उस सुप्रीम कंपेनियन की कंपनी का अनुभव कर रहे हैं। सभी मेहनत से, हट से और प्रश्नों से मुक्त हो गए हैं। यह ब्राह्मण परिवार एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया है। ऐसी दिव्य पवित्रता, ऐसा पवित्रता का तेज, ऐसा पवित्रता का सुख, अब एक एक आत्मा, हर एक ब्राह्मण आत्मा नीचे उतर रही है, विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। एक एक अनेकों के कल्याण के निमित्त बन रही है। संसार की आत्माएं आकाश में फरिश्तों को देख रही है। चारों इस भूमंडल पर पवित्रता के फरिश्ते ही फरिश्ते, पवित्रता का कैसा ये सैलाब आया है। इस बाढ़ में सारे पाप, सारे विकर्म नष्ट हो रहे हैं। यह वसुंधरा पुनः अपने अनादि स्वरूप में हर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गई है। चारों परमात्म प्रत्यक्षता, इसी दृश्य को अपने नैनों में भरते हुए मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने आज प्रतिज्ञा करता हूं। बाबा, आज से केवल और केवल मस्तक मणि को ही देखूंगा। बाबा, आज से संपूर्ण पवित्रता का व्रत मैं लेता हूं। मेरा हर संकल्प, मेरी दृष्टि, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म पवित्रता से आपूरित होगा। भगवान को ये वचन मैं आज दे रहा हूं और इस वचन को देकर प्रभु वरदान को लेकर मैं फरिश्ता पुनः इस तन में वापस आता हूं। ओम शांति। सभी इस पवित्रता के व्रत को धारण करेंगे, स्वयं को रोज याद दिलाएंगे। 15 नवंबर 2003 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने पवित्रता के लिए पावरफुल डायरेक्शंस दिए हैं। उन डायरेक्शंस को पढ़ना, उनका पालन करना और पवित्रता के लिए इस मुरली में जो विधि बाबा ने बताई है वो है बाप को साथी बनाना, कंबाइंड रहना, युगल मूर्त रहना, पवित्रता को अपनी वस्तु समझना, निजी वस्तु समझना। ये सारी बातें हमें करनी है, पवित्रता की प्लानिंग बनानी है अगले एक मास के लिए। मुरली में तो बाबा ने और बहुत सारी बातें कही है, परंतु सभी अपने अपने लिए इस मुरली से होमवर्क निकालेंगे और एक और बात सबको होमवर्क दे रहे, एक सर्वश्रेष्ठ पवित्रता की कमेंट्री स्वयं के लिए हरेक को निर्माण करनी है। बाबा ने कुछ ग्रुप से मुलाकात की है, जर्मनी से मुलाकात की है, जापान से मुलाकात की है, कहा है बाबा ने पहले ही आह्वान किया है उनको, डॉल कहा है, गोल्डन डॉल, फैन को याद किया, फ्लैग को याद किया, रूहे गुलाब को याद किया, कुछ उनको होमवर्क दिए। जर्मनी से बाबा ने बात की, कुछ ग्रुप से भी बात की, तो इस मुरली को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और पवित्रता के संबंध में बाबा ने और क्या क्या कहा है उन सभी महावाक्यों को कह पढ़ेंगे और प्रतिज्ञा स्वयं से भी और बाबा से भी। 169 की मुरली में बाबा ने कहा है रोज स्वयं से भी प्रतिज्ञा करो और बाप से भी प्रतिज्ञा करो, और इस प्रतिज्ञा को रोज अमृत वेले के बाद क्या करो, रिवाइज करो। समय हो रहा है, अच्छा, ओम शांति।